अब अगर हमारा बॉस हमें 2 बजे बुला ले और काम हमें कहे कोई, अब हम चूंकि मेंटली तैयार हुए हुए हैं छुट्टी के लिए, तो हम में से अक्सर लोग यही काम करेंगे कि दफ्तर में वापस अपने कमरे में जाके थोड़ी देर में अपने बॉस को रिंग कर देंगे, सर मैंने देखा वो आदमी इस वक्त दफ्तर में नहीं है तो मैं इसे कल करूंगा, ठीक है, और आराम से उठ के घर चला जाएगा। अब जब आदमी घर जाए तो उसका अकलौता बेटा है वो उसकी टांगों से चिमटता है और उससे कहता है कि मुझे आप अभी चिंगम लेके दें, तो कॉर्नर शॉप पे उसको आप अपनी गोद में उठा के लेके जाएंगे बच्चे को, तो अपनी जेब से रुमाल निकाल के उसके सर के ऊपर डाल देंगे इसे धूप नहीं लगे, और दुकान पे जाके उसने तो एक आपसे चिंगम मांगी थी, आप उसको 2-4 चीज़ें और भी खरीद के देते हैं और गोद में उठा के लाते हैं बड़े खुश। अब आपने उसे छांव में रखा, खुद धूप में रहे, अपनी हार्ड एंड मनी उसके ऊपर खर्च की है, उसको गोद में सवारी कराई है, लेके आए हैं और उसमें बड़ी खुशी महसूस की है। जबकि बॉस जो है जहां आपको सैलरी मिलती है, जिसके हाथ में अल्लाह ने ताकत दी है आपकी प्रमोशन की, आपकी इंक्रीमेंट्स की, उसकी बात को आपने टाल दिया है कल पर। दोनों में ये फर्क है, बॉस के यहां चूंकि खौफ है तो आपने उसका हुक्म कल पे टाल लिया, बेटे के साथ चूंकि प्यार है तो उसके बात को आप टाल नहीं सके, उसको फिलफौर आपने माना भी है और उसमें खुशी भी महसूस की है। तो इंसान मानता 2 ही हालतों में, खौफ से या किसी से मोहब्बत प्यार और इज्जत में, लेकिन दूसरी सूरत में जब वो बात मानता है तो अपनी खुशी से मानता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जिसको आप उस्ताद माने उसका अदब भी बेपनाह करें और उससे प्यार भी बेपनाह करें। तो जब आप अपने उस्ताद की मोहब्बत में इस तरह से डूब जाते हैं कि आपकी जात कोई जात ही नहीं रहती, उसने कहा कि ये दिन है तो आपने कहा कि बिल्कुल दिन है, आपने सोचा ही नहीं कि ये रात है, तो उसने कहा ये सही है तो आपने कहा जी बिल्कुल सही है, ये सोचना ही नहीं कि गलत भी हो सकता है, ये भले सामने ही नजर आ रहा हो कि ये गलत है। तो मोहब्बत में जब आप इस तरह से डूब जाते हैं कि अपनी जात को खत्म कर लेते हैं तो वो फिनाफिल शेख कहलाता है, असल में अरबी का लफ्ज है शेख बजाय शेख के, फिनाफिल शेख वो हो जाता है। इसी तरह अगर इस किस्म की मोहब्बत हो गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इंसान की अपनी जात कोई रही ही ना बाकी, तो वो फिनाफिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गया और उसके बाद इसी तरह अल्लाह ताला। तो ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती तसव्वुफ में, तो इसके लिए अंधा प्यार पालना पड़ता है, अपनी जात को खत्म कर देना पड़ता है। ये है वो तीन, ये टर्मिनोलॉजी है वहां। देखिए तसव्वुफ की तारीफ मेरा ख्याल है लाखों के हिसाब से मौजूद है, हर शख्स ने इसकी तारीफ अपने एक्सपीरियंसेस और अपने इल्म के लिहाज से कर दी है। आप उसे किसी रंग में बयान करते चले जाइए कि अल्लाह के अहकामात की तामील बगैर किसी रद्दोकद के तमाम तर खुशी के साथ करना तसव्वुफ है, अल्लाह के, या ये कह दें कि अल्लाह के अहकाम के एहतराम में अपनी तमाम ख्वाहिशात को, अपनी तमाम इरादों को तर्क कर देने का नाम तसव्वुफ है, कुछ भी कहते चले जाइए आप, उन तमाम बातों का मतलब एक ही निकलेगा, वो जो मैंने अर्ज किया था कि शरीयत पर अमल के तरीक़ाकार को आसानी के साथ तरीके अदा करने को तसव्वुफ का नाम दिया है, कि ये असल में इंसान की ट्रेनिंग कर देता है शरीयत के अहकामात की तामील में पेश आने वाली कठिन मराहल को तय करने के, वो तसव्वुफ है। ये तो तारीफ की बात है, लेकिन जो आम आदमी समझता है इसे, वो बड़ा गलत तस्वर लिए बैठा है। एक आम आदमी के जहन में तसव्वुफ का तस्वर यह है कि इंसान मावराए अक्ल सुपर नेचुरल पावर्स का हामिल हो जाए, जो सरासर गलत है। वो तसव्वुफ नहीं है, वो मदारीपन है, शोबदाबाजी है। तसव्वुफ तो यह है कि इंसान अपने आप को तैयार करने लगे तरबियत के जरिए, तालीम के जरिए, शरीयत को समझने और उस पर अमल करने के लिए। यह है तसव्वुफ। क्योंकि हमारे यहां तो बदकिस्मती से जोर जो है, जितनी किताबें आपको मिलेंगी उसमें तमाम तर जोर करामात पर होता है। अगर आज मैं किताब लिखूं अपने मुर्शद साहब पर तो मैं ये पहलू बिल्कुल खत्म कर दूंगा कि मेरे मुर्शद साहब रिस्क हलाल कमाने के सिलसिले में, अपनी खुददारी को कायम रखने के सिलसिले में, और इस सिलसिले में कि मेरा हाथ किसी के सामने ना फैले, इस सुन्नत को अदा करने में कि मेहमान नवाजी, खातर मदारात, तवाज़ो और खुशखुल्की, इन तमाम चीज़ों को कायम रखने के लिए, क्योंकि ये आला दर्जे की सुन्नत है और अल्लाह का हुक्म भी है, वो किस मुशक्क़त से गुजरते थे। मैं ये बयान नहीं करूँगा, मैं बयान करूँगा इसको कि साहब, वो एक साहब उनके पास आए, उनको शायद आप भी जानते हैं, हकीम रहमत इलाही उनका नाम था, जो इल्म जफर और इल्म ज्योतिष और मालूम में किस किस चीज़ में कोई अमल दखल रखते थे, और तबीयत में शरारत भी अल्लाह ने उतनी ही दी थी। तो वो मेरे सामने का किस्सा है, मेरी वाइफ के एक मामू हैं डॉक्टर जाहिद, ये हकीम रहमत इलाही उनके दोस्त थे, तो उनकी नस्बत से मुझसे मिले और फिर मेरे ज़रिए से वो मेरे मुर्शद साहब से मिल लिए। तो मेरे ही सामने बैठे हुए उन्हें कहने लगे कि आज मुझे कुछ पैसे दे दें। तो मैं इस बात पे बड़ा जज्बस हुआ कि तो गलत बात है, एक फकीर का भरम खोलना, मालूम नहीं बड़े शाह साहब के पास पैसे हैं कि नहीं है और ये उनसे पैसे मांग रहे हैं। तो अब मेरी ख्वाहिश ये कि किसी तरह मैं अपने मुर्शद साहब की दाईं साइड पर जुड़कर उनके साथ बैठ जाऊं और चुपके से उनकी साइड पॉकेट में पैसे डाल दूं ताकि उनका भरम कायम रह जाए, लेकिन वो मुझसे हो नहीं पा रहा था मुमकिन किसी तरह से। लेकिन वो अब मैं इसी चक्कर में था कि देखो इस शख्स ने क्या ज्यादती की है, फकीर का भरम क्यों खोलना। तो बड़े शाह साहब ने मेरे सामने जेब में हाथ डाला, मुझे पता था पैसे नहीं है, यहाँ खाली जेब थी तो इसमें ऐसे हाथ चलाते रहे थोड़ी देर, तो एक नोट निकाला बिल्कुल नया था, वो गालबन 2 रुपए वाला था। कहने अरे भाई ये नहीं चाहिए, वो फिर वापस रख लिया। तो फिर यूँ फिरते रहे तो 5 का निकला, ये भी नहीं चाहिए, फिर 10 का निकला, फाइनली 50 का निकला। कहने हाँ ये चाहिए। तो उस नोट का एक मैंने देखा कि उसमें स्टेपल का निशान भी नहीं था, खासतौर पर मैंने उसको चेक किया स्टेपल के निशान को, क्योंकि स्टेट बैंक जो जारी करेगा वो स्टेपल हुआ हुआ नोट होता है, उसे गड्डी वो बनाते हैं तो उसमें स्टेपल करते हैं, तो स्टेपल का निशान हर नोट पर होगा, उसमें निशान नहीं था वो। अब मैं अगर किताब लिखूंगा तो मेरा जोर इस बात पे या इसी तरह की और बहुत सी चीजें पेश आने आई जो जिंदगी में, वो उन पर होगा जोर मेरा। तो हम असल में घूम फिर कर दुनिया ही के चक्कर में रह जाते हैं, ख्याल ये होता है कि इस किस्म की जो सुपर नेचुरल पावर्स रखने वाला इंसान है वो हमें मिल जाए ताकि हम उसके पास जाके अपने दुनियावी काम हल कर मुश्किलें हल करवाते जाएं। कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ आवर माइंड यही ख्याल रहता है, शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो कभी ये कहते कि ऐसा आदमी मैं ढूंढ लूं तो इससे मैं कुर्बे इलाही का तरीका सीख लूं ताकि मेरी आकबत समझ जाए, हम लोग उधर को नहीं जाएंगे, क्योंकि वो राह दुश्वार है, उसके अंदर बड़ी इंसान को कुर्बानियां करनी पड़ती हैं, सख्तियां झेलना पड़ती हैं, वो मार हमसे बर्दाश्त नहीं होती, उसके लिए मुजाहिदा चाहिए। इसी हकीम रहमत इलाही साहब का एक किस्सा, वो उस दिन ऑलमोस्ट तकरीबन बेहोश हो गए। वो मेरे साथ एक वाकया ये पेश आया था कि एक बार मैं कॉन्फ्रेंस थी हमारी पेशावर में, उन्होंने कुछ काम चल रहे थे पेशावर, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था, तो मुझे पेशावर जाना पड़ता था खासा, क्योंकि बाय रोड जाना ज्यादा कन्वीनियंट है, जहाज की सीट का मसला और टाइमिंग का मसला, तो मैं आमतौर पर बाय रोड चला जाया करता था। तो शाह साहब भी मेरे साथ तशरीफ रखते थे अक्सर औकात। तो एक बार मैं जा रहा था पेशावर, वालदा ने कहा कि मैं भी चलती हूँ, तो मेरी एक सिस्टर उन दिनों उनके हस्बैंड की पोस्टिंग थी संजवाल कैंट में, जो अटक के करीब है, वीराने में बनाई गवर्नमेंट ने। तो वालदा ने मुझे कहा कि तुमने पेशावर जाना है तो मुझे रास्ते में तुम संजवाल छोड़ते जाना। और वो सूरत हाल ये है कि जीटी रोड से आपको अगर लाहौर से जा रहे हैं पेशावर, तो अटक से पहले जीटी रोड से लेफ्ट को एक सड़क इन्होंने निकाली है जो संजवाल कैंट गई हुई है, वो वीराने में थी उन दिनों, दोनों तरफ उसके रेत और बिल्कुल सन्नाटा। तो डेप्थ में वह है मेरा ख्याल है कोई 18 मील के करीब अंदर होगी या 12 मील, कोई ऐसा ही डिस्टेंस है वो। तो वो पतली सी एक सड़क थी उन दिनों, जो मैं बात कर रहा हूँ शायद 1979-78 की। तो वालदा को हमने सिस्टर के घर छोड़ा संजवाल कैंट में, तो वहां से वापस हम पेशावर के लिए मुड़े। शाम हो रही थी, गालिबन यही मौसम था मानसून का, बादल आए हुए थे। तो मैंने सडनली देखा गाड़ी उन दोनों भी काले रंग की एक मर्सिडीज होती थी मेरे पास 74 मॉडल, तो उसकी बोनेट पर आसमानी बिजली यूं लहरा रही है। मेरे अच्छा, उसके बाद वो आहिस्ता बोनट से हटी और सड़क पर करने लग गई। तो मैंने आराम से शाह साहब से कहा कि हजूर ये देखिए ये बिजली क्या कर रही है। कहने लगे तुम्हारी नजर अब पड़ी है इस पर, ये तो काफी देर से है, पहले छत पर थी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने इसे उस वक्त देखा जब ये बोनट पर थी। कहने लगे अभी इसको हटा देते हैं। नॉर्मली ऐसी बातें मैं कहता नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को इस पे यकीन नहीं आएगा और कुछ को यकीन आएगा तो वो शिर्क में चले जाएंगे, तो इसलिए इन बातों को अवॉइड करता हूँ। लेकिन ये आज करामात की बात चली तो उससे आपको बता रहा हूँ कि लोग क्या लिखेंगे किताबों में। तो मुझे कहने लगे अभी हटा देते हैं इसको। तो उसको कहने लगे हट जा भाई आगे से। तो मैं बिलीव नहीं कर सका क्योंकि मेरी वो मगरबी तालीम आड़े आती है। तो अगले ही लम्हे मैंने देखा कि वही बिजली सामने पहाड़ की चोटी पर चमक रही थी। चलिए हो गया किस्सा। कुछ अरसे के बाद मैं गया इस्लामाबाद में, मिनिस्ट्री में हमारी मीटिंग थी, तो वापस आने लगा तो हकीम साहब का टेलीफोन आ गया कि सर सुना आप आए हुए हैं यहाँ। मैंने कहा कि लाहौर कब जाना है। मैंने कहा बस 1-2 घंटे में चले जाऊंगा। कि मैं भी आया हूँ इस्लामाबाद, तो मुझे भी बिठा लीजिए साथ, आ जाइए। वही गाड़ी थी, तो हम इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे थे। जब मैं गुजर खान और जेहलम के दरमियान था, जेहलम और खारिया के दरमियान था, तो वहां पहाड़ के दरमियान में से सड़क गुजरती है, काट के बनाई हुई, दोनों तरफ पहाड़ हैं तो और बेंड है इस तरह। तो सडनली मैंने देखा कि उस दिन की तरह बिजली फिर मेरे बॉनेट पर है। वो गलती हो गई कि बजाय इसके मैं खामोश रहता, बेसाख्ता मेरी जुबान से निकल गया कि हकीम साहब देखिए तमाशा। तो हकीम साहब ने देखा तो वो उनकी चीखें निकल गई। तो मैंने कहा देखिए अभी अभी हटती है। तो मैंने ऊंची आवाज में कहा कि देखो वही क्यों डरा रही हो, आज तो शाह साहब भी यहां नहीं है जो तुम्हें कहेंगे एक तरफ चली जाओ। तो अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी देखी कि वो बोनट से हटी और दाई तरफ जो मेरे पहाड़ी थी उस पर चमकने लग गई। लेकिन शाह साहब वो हकीम साहब तकरीबन नीम बेहोश हो गए सीट के ऊपर, शाह साहब। तो हकीम साहब बेचारे वो ऐसे काम उनके दो फैक्टर्स हैं ना, एक तो ये है कि जब कमजोर आदमी को पावर मिलती है तो लाजमी नतीजा उसका ही निकलता है कि उस पावर को कुछ एक्सेसिव इस्तेमाल कर जाता है, तो एक्सेसिव हो जाती है। और इससे ज्यादा खतरनाक मामला ये है कि इल्म अगर तो आपको सफिशिएंट मिले तो उससे जहन खुलता है और इंसान के रवैये, कोई ऐसा कोना जो है वो जागरूकता है कि उससे फिर मुख्तलिफ चीजें पैदा हो जाती हैं। हम लोग ये समझते हैं कि किसी ने जादू कर दिया, जिन्नात आ गए, भूतों ने पकड़ लिया। अभी तक मुझको तो ऐसा जिन रूए जमीन पर नजर नहीं आया जो इंसान से ताकतवर हो। इंसान से बात जिन ही कोई नहीं है, हकीकत यह है अल्लाह ने इसे इतनी कुवतें अता फरमाई हैं। तो जिन बेचारे ने किसी इंसान को क्या पकड़ना, वो तो खुद छुपता फिरता है इंसान से कि मैं इससे महफूज हो जाऊंगी इसी तरह। और इसी तरह ये काले जादू का आजकल किस्सा चल निकला हुआ है, और बाज़ का हैरत होती, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आके कहते हैं कि साहब जादू हो गया, और यकीन कीजिए कि नहीं हुआ हुआ होता। वो फर्क वहां आ रहा है कि हमारी ख्वाहिशात और हमारी आरजुओं की हद इतनी बढ़ गई है कि वो गैर फितरी हद को छूने लगी है। और दूसरा ये है कि सब्र खत्म हो गया हमारे अंदर। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई है वो अभी और इस वक्त पूरी हो जाए। रब ताला का तो अपना एक निजाम पूरा काम कर रहा है, उसके अंदर बहुत से फैक्टर्स हैं। हत्ता कि एक फैक्टर यह भी है कि खुद इंसान के लिए उसकी ख्वाहिश कितनी फायदेमंद है, ये कितनी नुकसानदेह है। हम तो जब हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है, ये नहीं सोचते कि इसका हमें कल को कोई नुकसान ही ना हो जाए। तो जब वो पूरी नहीं होती हमारी आरजुएं और हमारी ख्वाहिशात, तो हम इल्ज़ाम देते हैं अपने मुखालफीन को, हासिदों को कि साहब उन्होंने जादू कर दिया। हालांकि ऐसा होता नहीं है। देखिए ना, गवर्नमेंट का महकमा है, फर्ज कर लीजिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, वहां अगर एक साहब हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं, अब उनकी ख्वाहिश ये होगी कि मैं जल्द अज जल्द सेक्रेटरी हो जाऊं। अब वो ख्वाहिश कर रहे हैं, ये उनका हक भी है ख्वाहिश करना, लेकिन इसमें तो बहुत से फैक्टर अब काम करेंगे। उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनके बॉसेस उनके बारे में क्या समझते हैं, फिर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग वैकेंसी है भी कि नहीं, बजट में प्रोविजंस हैं या नहीं है दो सेक्रेटरीज की, क्योंकि पहला भी तो मौजूद है। अब वो पहला तो गरीब, या तो ट्रांसफर होगा वहां से या रिटायर हो जाएगा। तो अब उसका ट्रांसफर होना और रिटायर होना तो इस एडिशनल सेक्रेटरी के अख्तियार में नहीं है। अब वो एडिशनल सेक्रेटरी साहब कहेंगे कि साहब बताइए, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, मुझ पर तो किसी ने काला जादू कर दिया। अब उनको बैठ के आदमी समझाता है कि भाई तुम अपनी सीनियोरिटी देखो, तुमने जो अब तक सर्विस की है उसको देखो, तुमसे ज़्यादा लेंथ ऑफ सर्विस के सीनियर लोग पड़े हुए हैं, तुमसे ज़्यादा एफिशिएंट लोग पड़े हुए हैं, उनका हक है। वो एक ही बात कहे जाएगा, सब जादू हो गया मुझ पर। तो ये एक बड़ा, वो फिर उससे बाज का नींद नहीं आती बंदे को, वहम में चला जाता। ये बात तो उसका एक आसान इलाज है, मुझसे तो एक साहब ने कहा था कि रात को नींद नहीं आती, बड़े नाराज थे इस बात पर। तो मैंने उनसे कहा कि सब कमा ले आप, जिस बात का शिकवा कर रहे हैं, मेरा तो दिल चाह रहा है कि उठ के आपके हाथ पकड़ लूं, क्योंकि आप तो वली अल्लाह हैं, اور یہ اکرام رات کو نہیں سوتے، آپ تو ولی ہو گئے جو رات کو نہیں سوتے، عبادت کیا کیجیے، مزہ کریں۔ یہاں تو لوگ جاگے رہنے کی گولیاں کھا کے رات کو جاگتے ہیں کہ عبادت کا وقت مل جائے۔ الیاس صاحب زندگی کا حصہ، مجھے یہ بتائیے کہ وہ گاڑی آپ نہیں لیتے ہیں، مزے سے دعائیں پھرتے ہیں اسے، پھر جب وہ 2-4 لاکھ میل چل جاتی ہے تو پھر اس کی ہر روز ایک رپیئر ہوتی رہتی ہے، آج اس کا جنریٹر چلا گیا، آج سیلف سٹارٹر چلا گیا، آج اس کا فلاں، تو نیچرل چیز ہے، اتنی عمر ہو گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اتنی عمر کے بعد اگر اتنا ہی آدمی چلتا پھرتا ہے تو اللہ کی بڑی عنایت ہے، اس کی رحمت ہے کہ چل پھر رہا تو لگا ہی رہے گا، جو عمر بڑھ رہی ہے ہوتا ہی رہے گا، آج گھٹنے کی رپیئر ہو رہی ہے، کل ہاتھ کی رپیئر شروع ہو جائے گی، بس دماغ کی رپیئر نہ ہو۔ بھائی یہ بھروسہ اور توکل اصل میں دونوں ایک ہی چیز ہیں، اور وہ پہلے بھی کئی بار اس موضوع پہ بات ہوئی تو میں ہمیشہ ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ جب انسان اس چیز سے واقف ہو جائے کہ میری ذمہ داری کہاں ختم ہوگی اور اس کے بعد اللہ کی ڈسکریشن کہاں شروع ہوگی، تو وہ اس فرق کا ادراک میرے نزدیک بھروسہ کہلاتا ہے، کہ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے ذمہ صرف ایک کام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں اور قوتیں عطا فرمائی ہیں، میں ان قوتوں سے بھرپور کام لے کے محنت کروں اپنی تمام تر قوت اور طاقت کے مطابق، اور جب اپنی کسی میں کوشش کر لوں تو پھر اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو، کہ یہ اس کا انعام دینا اللہ کا کام ہے، اس محنت کا صلہ دینا، اور اللہ کی جانب سے جو کچھ صلہ عطا ہو اسے خوش دلی سے قبول کر لے، یہ توکل اور بھروسہ ہے میرے نزدیک۔ اور ویسے عرف عام میں جو عام معنوں میں بھروسہ استعمال ہوتا وہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی محنت کرتا رہے لیکن اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب موجود ہے اور وہ ضرور مجھے لکافٹ کرے گا، میری مدد کر دے گا وقت پر، تو یہ عرف عام میں بھروسہ کہلاتا ہے۔ اس کی نسبت یہ پہلی چیز زیادہ پے کرے گی آدمی کو، کہ ذہن میں ایک بات یہ کلیئر ہو جائے، یہ جو ابھی آرزو اور خواہشات کی بات کر رہا تھا اس ضمن میں بھی اگر آپ اسے اپلائی کریں تو پتہ چل جائے گا کہ یہیں آ کے پٹ جاتا آدمی۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ نہیں کر پاتے کہ جو اللہ نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، قوتیں عطا فرمائی ہیں، ان سے کام لے کے صرف محنت کر لے اور پھر چھوڑ دے رب پر، اور جو رب کی طرف سے عطا ہو جائے اس کو خوش دلی سے، یہ بنیادی چیز ہے کہ خوش دلی سے تسلیم کر لے، اسے قبول کر لے۔ دیکھیے ایک وقت میں یہاں پہ ایک موضوع ڈسکس ہوا تھا ہمارے یہاں کہ رب تعالیٰ کی دو صفات ہیں، ایک کہ وہ رحمان ہیں اور دوسری صفت تھی رحیم کی۔ لغتی لحاظ سے تو دونوں الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن اصطلاحی معنوں میں ان میں فرق آ جائے گا دونوں۔ رب تعالیٰ اپنی رحمان ہونے کے ناطے تو عطا فرماتا ہے بغیر دیکھے، بغیر حساب کے، بغیر کسی چیز کا لحاظ کیے وہ سب کو عطا فرماتا ہے۔ اس میں وہ بھی ہیں جو اسے مانتے ہی نہیں، ایتھسٹ جن کو ہم کہتے ہیں،
वो उन्हें भी अता फरमाता है और उनकी भी सुनता है, वो मुशरकीन की भी सुनता है और मुसलमानों की भी सुनता है और मोमिनों की भी सुनता है और इन सबको खुले हाथ से अता फरमाता है। ये उसकी रहमान होने की सिफत है। लेकिन बहसियत रहीम के वो अता फरमाता है मुख्तलिफ फैक्टर्स की बुनियाद पर, वो अपने मानने वालों को अता फरमाएगा और ये उसके रहीम होने ही की सिफत है जिससे न मांगने पे नाराज होगा। तो उसकी मुख्तलिफ सिफात हैं जिनके तहत उसकी रबूबियत काम करती है। तो किसी न किसी सिफत से लोग नवाजे जाते हैं। तो वह रहमान होने के नाते तो सबको पाल रहा है, वो मुजैसों को भी पालता है, सबकी सुनता है, सबकी दुआएं कबूल फरमाता है। उसमें मुजैसे लोग भी हैं और आप जैसे नेक लोग भी हैं की सुनता है। हाँ अलबत्ता रहीम होने के नाते बहुत कुछ कंसिडरेशन में आती चीजें और सबसे बड़ी बात यह कि ना मांगने से नाराज होता। अब ये जो मांगने की बात है, अब इस बात से सिर्फ ये मत समझिएगा कि जब हम मांगने की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक तसव्वुर ये आता है कि साहब हम उससे आटा दाल नमक मिर्च मसाला ही मांगते रहें। तो रिस्क देने का तो उसका वादा है, रब है, पालता है। मांगने को और बहुत सी चीज़ें हैं जिसका उसने वादा नहीं किया कि मैं ज़रूर अता करूँगा, जैसे उसने पालने का वादा किया, रिस्क देने का वादा किया, इस तरह से इस वजन पर उसका वादा दूसरा नहीं। तो उससे उसकी रहमत मांगी जा सकती है, उसका रहम मांगा जा सकता है, उससे अपनी मगफरत मांगी जा सकती है, उससे उसका कुर्ब मांगा जा सकता है, उससे उसकी दोस्ती मांगी जा सकती है और सबसे बढ़कर ये कि खुद उससे उसकी ज़ात मांगी जा सकती है। लेकिन वो बदनसीबी से हम लोग मांगने पे यही समझते हैं कि शायद दुनियावी चीजें ही हैं।
शाह साहब शुक्र करने का क्या तरीका?
देखिए भाई, फकीर जिस तरीके से शुक्र अदा करता है वो तो बड़ा थोड़ा सा अजीब है कि वो ये समझता है कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरा नहीं है, मेरे रब का अदा करता है और जो कुछ मेरे पास है इस पर मेरा सिर्फ इतना हक है कि मैं इससे अपनी और अपनी ख़ानदान की जायज़ ज़रूरियात पूरी कर लूँ और उन जायज़ ज़रूरियात के पूरी होने के बाद जो कुछ बच रहे वो सब दूसरों का है, उस पर दूसरों का हक है, जो चाहे आके ले जाए और वो अपने मुखालफीन पे, दुश्मनों पे दिल खोल कर खर्च करता है ये समझ के कि ये मेरे रब के बंदे हैं और मेरे पास जो कुछ है इस पर इनका हक भी मौजूद। तो जिस खुशी के साथ वो दूसरों पे खर्च करता है यही इजहार तशक्कुर है। फकीर इसको इस रंग में लेता है जिसमें तीन चार नुक्ते जो है मुख्तसरन अगर ये हों कि पहली बात तो ये है कि मेरे पास जो कुछ है वो मेरे रब का अता करता है, मेरा नहीं। नंबर दो, जो कुछ मेरे पास है इस पर अल्लाह के दूसरे बंदों का भी हक है और तीसरी बात ये है कि ये समझते हुए कि इस पर दूसरों का हक है उसमें ये तफरीक ना हो कि ये मेरा मुखालिफ है और ये मेरा दुश्मन है। इसलिए कि ये तो उस वक्त वो समझेगा अगर उसके जहन में ये ख्याल हो कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरा है। जब अल्लाह का है तो उसके सभी बंदों का हक है। और तीसरा ये है कि जब वो दूसरों पे खर्च करे तो बगैर किसी किस्म की रिटर्न की तो रखे बगैर खर्च करे कि इनका हक मैं इन्हें पहुंचा रहा हूँ, ये इजहार तशक्कुर है फकीर का। तो मेरी तो आपसे दरख्वास्त यही है कि यही दिल में रखिए और इससे बेहतर शुक्र अदा करने का कोई तरीका है नहीं, दिल से ये निकल जाए कि सब दूसरों का है, मेरे रब का अदा करता है, उसने सबका हक है, कोई ले जाए, ये बेहतरीन शुक्र होगा अल्लाह का।
दिल में ये तो ना कि अल्लाह ताला इसका मुझे अजर देगा, वो तो ठीक है।
देखिए एक चीज मुझे ये बताइए, एक चीज ये फरमाइए डॉक्टर साहब कि आपके घर में अगर दो मुलाजिम हैं, एक मुलाजिम आपकी भरपूर खिदमत करता है और उधर फर्स्ट होती है और वो आपसे कहता है कि साहब मेरी तनख्वाह, ये उसका हक है और आपने कमिट किया उससे कि मैं तुम्हें पे करूंगा महीने का, तो वो आपसे अपनी तनख्वाह की तवक्को रखता है कि हर फर्स्ट को मिल जाएगा। एक दूसरा मुलाजिम है आपका, वो आपकी खिदमत कर रहा है, फर्स्ट को वो आपसे नहीं मांगता तनख्वाह, ऐसे ही आप उससे अजराए फन 10 तारीख को पूछते हैं कि भाई तुमने तनख्वाह नहीं लेनी थी, तो आपसे कहता है कि सब मैं तो आपसे प्यार करता हूं, तो आपकी खिदमत में सिर्फ प्यार के लिए कर रहा हूं, उसके बावजूद आप उसे तनख्वाह देंगे, लेकिन दोनों मुलाजमों में से आपको अजीज कौन होगा? जो तवक्को नहीं रख रहा वो आपसे मोहब्बत की वजह से आप खिदमत कर रहा है। अगर अल्लाह की राह पर हम खर्च करें ये तवक्को रखते हुए कि अल्लाह इसका 10 गुना हमें अता फरमाएगा, तो आज अगर 1 रुपया मैंने फकीर को दिया तो उसके बाद मैं इस इंतजार में हो जाऊं कि मेरे 10 रुपए कब आएंगे वापस, आएंगे तो जरूर, इसलिए कि रब तो अता करेगा, एक वो कैफियत है। दूसरी कैफियत ये है कि मैं इसलिए अल्लाह के नाम पे खर्च करूं कि उसी का तो दिया हुआ है, उसके बंदों के काम आ जाए और दिल में उसके किसी रिटर्न की कोई तवक्को ना हो, तो रब को क्या चीज ज्यादा पसंद आएगी? तो उसने अजर तो देना है क्योंकि ये उसका वादा है, तो वो फिर अजर अपनी मर्जी से देगा खुश होकर, जिसकी ना कोई हद है ना कोई हिसाब, तो फिर ऐसे ही हम घाटे का सौदा कर लें उससे इस किस्म के। देखिए मैं आपसे एक बात पे फिर अर्ज करना चाहता हूं कि आप इल्म फिका, इल्म हदीस, इल्म तफसीर ये सब सीखिए, अच्छी बात है, लेकिन एक जहन में रखिए बात कि बहुत सा इल्म सीखकर उस पर अमल करने के बारे में सिलेक्टिव हो जाने से बेहतर है कि थोड़ा सा इल्म सीखे आदमी लेकिन साथ ही साथ उस पर अमल करता चला जाए, अल्लाह को ये बात ज्यादा पसंद आएगी। और जहन में ये बात हमेशा रखिए कि अल्लाह को अपने बंदों से ज्यादा कोई अजीज नहीं, तो अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह आप पे मेहरबान हो जाए, तो आप अल्लाह के बंदों के साथ मेहरबान हो जाइए, रब आप पर मेहरबान हो जाएगा, दूसरों के लिए कुर्बानी देना शुरू कर दें, जिंदगी भर कभी आप घाटे का सौदा नहीं कर पाएंगे। ये दो काम कर लीजिए, एक तो ये है कि बी काइंड टू अदर्स, और दूसरा ये है कि दूसरे बंदों के लिए अपनी ख्वाहिशात की, अपनी जरूरियात की, अपने आराम की कुर्बानी कर दीजिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाएगा आपको, उसकी दोस्ती में आएगी। तो ज्यादा जोर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर दीजिए, फकीर इस पहलू पर ज्यादा जोर देता है, उसकी अपनी जो जिंदगी है कभी आप उसको गहराई से देखें तो उसमें जो मेजर एम्फेसिस है उसका वो इस एस्पेक्ट पर ज्यादा है। तो मेरी तो आपसे गुजारिश ये है कि अगर, और जो यकीनन है कि आप अल्लाह का कुर्ब ढूंढ रहे हैं, تو پھر یہ دو کام کر لیجیے آپ.
جیسے
کہ
اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر لیں اور باقی جو ہے وہ ضرورت کی کوئی ڈیفینیشن نہیں, کوئی لمٹ ہے.
میں نے تو یہ کہا تھا کہ جائز ضروریات پہ. آپ فرض کر لیجیے مارکیٹنگ میں جاب کر رہے ہیں, آپ کی جاب کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ ویری ویل ڈریسڈ ہوں, ویل گرومڈ ہوں. آپ کی ضرورت دو جوڑے کپڑوں سے نہیں پوری ہوتی ہے, چار سے پوری ہو جائے گی. یہ جائز ضرورت ہے. بڑے سادہ سا ہی ہے کہ جس سے آپ کی زندگی ہے, آپ کے جو ڈیپینڈنٹس ہیں ان کی زندگی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. تو باقی تو لگژریز میں آ جاتی نا باتیں. وہ ضروریات پوری ہونا وہ آپ کا پہلا فرض ہے کہ ان کے لیے آپ کی آمدنی جو ہے اس میں سے وہ پہلے نکلے گا, پھر باقی جو بچ جائے وہ دوسروں کا ہے.